सूरतुल काफिरून ये मक्की सूरत है, और इसमें काफरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने को कहा गया है। और इस सूरत में बरात है काफरों के अकीदे से, काफरों की इबादत से। ये नहीं कि ये हर काफिर के बारे में आप खड़े होके ये कहना शुरू कर दें, बल्कि जिन्होंने आपका पैगाम सुन के इसको रद्द किया, ना माना और उसी पे अड़े रहे, उनसे ये बातें की जा रही हैं। इस सूरत का नाम अल काफिरून तो आप पढ़ते ही हैं, बुखारी में इसका नाम कुल या अय्युल काफिरून है। इसको सूरतुल बराअ भी कहा गया है, यानी बरात से, यानी डिसोसिएट करना कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें बरात है काफरों के अकीदे से। और सूरतुद्दीन भी कहा गया क्योंकि आखिरी आयत में दीन है। और सूरतुल्इबादा भी कहा गया क्योंकि इबादत का जिक्र है इसमें, सारी सूरत में ना, ला आबुदू मा ताबुदून इस तरह। और सूरतुल्मुनाबिजा भी कहा गया, नबाजा से फेंक देना, इसमें शिर्क को दूर फेंक दिया गया। इसी तरह इसका एक नाम जो शायद आपने पहले ना सुना हो, सूरतुल्मुकशकिशा। मुकशकिशा, कशकिशा कहते हैं बीमारी से शिफा याब हो जाने को, तो शिर्क भी एक बीमारी है ना। इस सूरत का पैगाम शिफा है जिससे बीमारी दूर हो जाती है। याद रखें, सूरतुल कैफिरून और सूरतुल इखलास मुकशकिशीन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों सूरतें दवा हैं, शिर्क से हील होने का जरिया है, इनका पैगाम ऐसा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत इस तरह से है कि इसकी फजीलत में आता है कि ये 1/4 कुरान के बराबर है, 1/4 कुरान के बराबर, यानी इसको पढ़ना, इसके से जो अजर मिलेगा वो ऐसे है सवाब में कि जैसे आपने 1/4 कुरान पढ़ा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दो सुन्नतें जो हैं उनमें पहली रकत में सूरतुल कैफिरून पढ़ते थे, और कब पढ़ते थे? नंबर 2, तवाफ के दो रकतें जो होती हैं, तवाफ के जो दो नफल आप पढ़ते हैं, तो पहली रकत में आप सूरतुल कैफिरून पढ़ते हैं। इसी तरह मगरिब की जो दो सुन्नतें उसकी पहली रकत में सूरतुल कैफिरून पढ़ते हैं, और चौथी जो वितर आप पढ़ते हैं, अगर 3 वितर पढ़ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरह आला जो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, और दूसरी रकत में सूरतुल कैफिरून, और तीसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। नौफल अशजई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ ऐसी बात सिखा दे जो मैं रात को सोने से पहले पढ़ूँ, बिस्तर पे जाने के वक्त में वो पढ़ लिया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फरमाया, तुम कुल या हियोल कैफिरून पढ़ लो, ये शिर्क से बेजारी है, यानी आप शिर्क से बरात का इजहार कर लेते हैं इसमें कि मेरा नहीं इससे कोई ताल्लुक शिर्क से। तो हर किस्म के शिर्क से इंसान को ये बरी कर देती। तो आपने कितनी बातें सीखी, कब कब पढ़ने की, इस सूरत की यानी सुन्नत में भी मौजूद है और आप पढ़ सकते हैं। यानी आप ये देख लें कि सुबह से आपने जब डे अपना स्टार्ट किया तो आपने ये कह के स्टार्ट किया, और रात को सोने के वक्त जब आप सोने से पहले बिस्तर पे लेट रहे हैं उस वक्त भी आपने ये कही, और बीच में भी कही, कम से कम दिन में 4 दफ़ा तो आप पढ़ ही लेंगे। देखें, बिस्तर पहले आप सुबह फजर के वक्त से लें, फजर की आपने सुन्नतों में पढ़ी तो अभी कोई भी और चीज़ नहीं पढ़ी थी, पहले सबसे पहली रकत में ये पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मगरिब के वक्त पढ़ी, फिर आपने वितरों में पढ़ी, फिर आपने सोने के वक्त बिस्तर पे जाते हुए पढ़ी, तो कितनी दफ़ा आपने पढ़ी? 4 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ लेंगे, और 4 दफ़ा पढ़ ली तो एक पूरे कुरान के पढ़ने के बराबर सवाब हो गया। तो ये भी 18 सूरत है कुरान करीम के नज़ूल के एतबार से। और अलकौसर से इसका क्या ताल्लुक है? देखिए, अलकौसर में खैर कसीर की बात आई, अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत खैर दी गई, और इसमें आपके जो दुश्मन हैं, जो काफिर हैं, उनके साथ आपको कहा गया कि आप इनको ये जवाब दें। आपको तो अल्लाह ताला ने खैर कसीर दे दी है, अब आप इनके सामने शिर्क से बेजारी का इजहार करें। और देखें, कुफर क्या चीज़ है? और हम सोचते हैं ना कि शायद कुफर ये है कि जो बस काफिर, हम किसी को समझ लेते हैं कि ये बस काफिर है और बस इनके साथ ये मामला आते हैं। और हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए, लिहाजा हमारा तो इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, कुफर के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ। हालांकि आप देखें कि जो कुछ ऐसे अमूर हैं, कुछ ऐसे खतरनाक काम हैं जिनको अगर इंसान करता है, उनमें से कोई एक भी कर ले, तो इस्लाम से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और याद रखिए, या तो ईमान है या कुफर है, ऐसा नहीं है कोई बीच में कोई चीज है ही नहीं है, या तो कोई मोमिन होगा या काफिर होगा। जो बीच वाला कोई समझती है ना, कोई बीच में भी कोई रास्ता होगा, वो जो बीच बीच वाला होता है, अगर आप मुनाफिक समझते हैं तो मुनाफिक भी काफिर ही है असल में। क्या जो कुफर है वो, उसके अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर सारी ही चीजें आ जाती हैं। बाज लोग समझते हैं ना कि कुफर का मतलब ये है कि सिर्फ वो काफिर जो बुत परस्त है वो, नहीं, जो भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है वो भी कुफर है, जो अल्लाह ताला की नहीं मानता वो भी काफिर है, यानी एथीस्ट भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है, यानी आप ये कह लें कि जो मोमिन नहीं है वो काफिर ही है। और कुफर का माना क्या होता है? ये शुक्र का उलट है असल में। कुफर का माना कफारा कहते हैं छुपाने को, तो नाशुक्रे ने क्या छुपाया? शुक्र का उलट है ना, नाशुक्रा होना, काफिर वो है जो नाशुक्रा है, उसने क्या छुपा दिया? उसकी फितरत में जो तौहीद थी ना, उसको उसने छुपा दिया, उसके ऊपर जो अल्लाह ताला के एहसानात थे ना, उसने उनको छुपा दिया, उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया, मानना ही नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये एहसानात किए हैं। तो नाशुक्रा काफिर जो होता है वो नाशुक्रा, और उसके बाद जब आप इसको फिक्ही टर्म में लेकर आए तो वो जो अल्लाह ताला को ना माने, उसका इनकार कर दे, ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। काफिर ने अपनी फितरती छुपा ली ना, ये उसकी फितरत में था कि एक अल्लाह है जिसकी इबादत की जाए, और हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, तो उसकी फितरत उसको इस्लाम की तरफ लाती है, लेकिन वो कैसा इंसान है जिसने उसका इनकार कर दिया जो उसको खिलाता है पिलाता है, जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको सब कुछ दिया, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। देखिए ना, एक नाशुक्री होती वैसे ही दुनिया में कोई थैंकलेस है, लेकिन सबसे बड़ी नाशुक्री, इसीलिए इसको काफिर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी नाशुक्री कर रहा है, ये तो उसकी नाशुक्री कर रहा है जो उसका खालिक है, मालिक है, मोहसिन है, मुनअम है, जो उसको उसको सस्टेनेंस देने वाला है, उसको कायम रखने वाला है उसकी हस्ती को, उसी का इनकार कर दे। तो और फिकही टर्म में फिर क्या हो गया? कुफर का मतलब है कि ईमान का ना होना। फमिनकुम मुमिनु व मिनकुम काफिर, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन है और कोई और भी और बहुत तरह के हैं, नहीं, एक मोमिन है या काफिर है, इसके बीच वाली कोई कैटेगरी है ही नहीं, याद रखें, जो मोमिन नहीं है वो काफिर ही है। ठीक है, अब कुछ लोग समझते हैं काफिर होना एक गाली है, वो इसको गाली समझते हैं, क्यों? इसलिए कि वो कहते नहीं, नहीं भी किसी को गाली ना हो दो, काफिर कहना भी एक गाली हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये तो उस बंदे के लिए है जो कि मोमिन नहीं है, जिसके अंदर ईमान नहीं है वो काफिर है। तो किसी को ये इंसल्ट लगती है, लेकिन इंसल्ट की क्या बात है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता वो काफिर ही हो गया, और अल्लाह ताला ने उनको काफिर ही कहा है जो अहले मक्का थे, मुशरिकीने मक्का थे। क्यों? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? वो तो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, उनसे कहें किसने पैदा किया आसमानों जमीन को, कहते थे अल्लाह ने, लेकिन साथ शिर्क करते थे ना, इसलिए वो भी काफिर ही कहलाए हैं। याद रखे ये बात नहीं कि हम किसी को कह दें कि वो तो मानते ना, ईसाई एक अल्लाह को तो मानते, यहूदी एक अल्लाह को तो मानते, वैसे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वैसे नहीं, अल्लाह की इबादत करते तो वो अल्लाह ताला का इनकार ही करते हैं।
तो अब देखें, मैं आपको वो 10 काम बताऊंगी जिनसे कोई इंसान इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, अगर वो 10 काम कोई अपने आप को समझता है कि वो मुसलमान है लेकिन इनमें से कोई काम कर लेता है, उसको दोबारा शहादा लेनी होगी, उसको दोबारा डिक्लेयर करना होगा अपना इस्लाम, क्योंकि अब वो इस्लाम से निकल गया। नंबर 1, ये बहुत खतरनाक काम है, अल्लाह की इबादत में शिर्क करना। अल्लाह ताला इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा कि उसकी इबादत में किसी को भी शरीक किया जाए। अब वो किसी तरह भी शरीक करना हो गया, क्या मतलब है कि किसी को, मतलब ना कि किसी को किसी की जाके सिर्फ ऐसे पूजा नहीं करना, बल्कि मतलब ना किसी आस्थाने पे जाके नजरे न्याज देना, किसी के नाम का ज़िबा करना, किसी के से मांगना, मुर्दों को पुकारना, उनसे मदद मांगना, चाहे वो कितने ही औलिया अल्लाह हैं, उनके लिए नजरे न्याजे मांगना या उनके लिए ज़िबा करना या उनके आगे सज्दे करना। दूसरा, जिसने अल्लाह और अपने दरमियान कोई वास्ते और वसीले बनाए, जिनको वो पुकारता है और उनसे शिफात तलब करता है, उन पर तवक्कल करता है, उन पर भरोसा करता है, तो उसने भी कुफर किया। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने कहा कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को, तो वैसे वो गौसे आज़म ही कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई वो ही हैं, उन्होंने ही हमारी शिफात उस दिन करनी है, अब हम उनके मुरीद बन जाएंगे, तो बस उन्हीं को पुकारते हैं या गौसे आज़म और ऐसे बातें करते हैं। तो अल्लाह और अपने दरमियान कोई ऐसा वसीला बना देना जिसको पुकारे और उससे ही शिफात मांगे कि तू मेरी शिफात कर, या अली मदद, या कोई और ऐसे कलिमात कहे। तीसरा, जो मुशरिकों को काफिर ना समझे और ना ही उनको काफिर कहे और उनके कुफर में शिर्क करे और उनके मजहब को सही कहे, वो भी काफिर है। कई लोग ऐसे देखेंगे हैं, वो कहते हैं तो क्या हो गया, सारे ही ठीक हैं भाई, सारे ही मानते हैं, सारे ही सही हैं, आप ऐसे ना कहें, उनको भी ना काफिर कहें। नहीं, मुशरिक जो है वो काफिर है। अब ये मतलब नहीं आप उनके साथ बुरा सलूक कर लें, आप तलवार निकाल के उनके साथ, लेकिन देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि समझना कि कौन काफिर है, इसलिए कि जो काफिर है उसके साथ निकाह नहीं हो सकता, उसके उसके विरासत में हिस्सा नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं हो सकती, आप उसकी कफन दफन और उसके अंदर नहीं शामिल हो सकते। तो मुशरिकों को काफिर नहीं समझा जा सकता। चौथा, ये अकीदा रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का तरीका ज़्यादा बेहतर है और मुकम्मल है, किसी और का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अफजल है। अब वो चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे वो कोई फिलोसोफर है, चाहे कोई कोई है, मगर उनके तरीके आपके तरीके से बेहतर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, आपका तरीका नऊज़ु बिल्लाह वो समझे कि आउटडेटेड है। पांचवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए हैं उसमें से किसी चीज से बोझ रखे, अगरचे वो इस पर अमल ही क्यों ना करता हो लेकिन उसके दिल में बोझ है, वो नाखुश है उससे, चाहे उसके ऊपर अमल कर भी रहा है चीज पे, अब चारो नाचार कर रहा है, मारे बांधे कर रहा है, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है, तो वो भी काफिर हो जाता है। 6, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक उड़ाया, इसको हकीर समझा, सवाब का या सजाओं का, इनका मजाक उड़ाना या शायर का मजाक उड़ाना, उसने भी कुफर किया। और इनकी पूरी पूरी दलाइल हैं, आयतों से दलीलें हैं इनके, जैसे सूरह तौबा 65-60 से, अभी हम इसमें जा नहीं सकते असल में। 7वां, जादू, जिस जादू में की तरफ किसी को मायल करना और किसी को फेर देना, कोई जादू करे या इस पे राजी हो, उसने भी कुफर किया, क्योंकि सूरह बकरा 102 में यही है। 8वीं चीज, मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों की मदद करना और उनके साथ तावुन करना, सूरह माईदा 51 में ये है इसकी दलील, वो उन्हीं में से फिर है ना, जो उनके साथ मिलके मुशरिकों के साथ उनकी मदद करता है, उनके साथ तावुन करता है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे उनकी फौज में मिलके करता है या किसी और भी सूरत में। 9th, जो ये अकीदा रखे कि बाज़ लोगों को शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलना जायज़ है, जिस तरह के खिजर को मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से निकलना जायज़ था, यानी कोई और तलाश करे तरीके, कोई और शरीयत तलाश करे और समझे कि इस शरीयत की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कोई और शरीयत ठीक है। 10th, अल्लाह ताला के दीन से एराज़ बरतना, ना तो उसका इल्म हासिल करना, ना ही इस पर अमल करना, और इसकी दलील सूरह सजदा की आयत 22 है, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे अल्लाह की आयतों से वाज किया जाए फिर भी वो उसे मुंह मोड़ ले। तो ये नवाकिस इस्लाम कहलाते हैं, ये वो हैं जो इस्लाम को ख़त्म कर देते हैं किसी इंसान का। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए ये समझना चाहिए कि ये नहीं है कि आप इस्लाम पे ही हैं, चूंकि आप मुसलमान घर में पैदा हुए थे तो आप मुसलमान ही हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई इनमें से किसी चीज़ का इर्तकाब कर लेता है तो उसको अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और वापस इस्लाम के फोल्ड में आना चाहिए, वरना वो काफिर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता चला इस सूरत की, अच्छा शाने नजूल किया है। देखिए कुरैश ये समझते थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बेटों की वफात हो गई, और मुसलमानों को भी टॉर्चर करते थे, समझते थे कि ये दीन इस्लाम तो ख़त्म हो जाएगा, मगर वो देख रहे थे कि ये दीन तो आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें इस चीज़ के लिए, किस तरह से इसका मतलब इस दीन को ख़त्म किया जाए। तो पहले तो उन्होंने उतबा को भेजा कि आपको पैगाम दे के अगर आपको माल चाहिए, आप सबने ये वाकया सुना हुआ है, माल चाहिए या औरत चाहिए, किसी के साथ शादी करनी है या हुकूमत चाहिए, या आपको कोई बीमारी लाहक हो गई, कोई दीवानगी है तो हम उसका इलाज करा दें, हुकूमत चाहिए तो हुकूमत दे देते, पैसा चाहिए पैसा दे देते, किसी औरत से शादी करनी है वो करा देते, लेकिन आप ये दीन छोड़ दें। जब उन्होंने देखा इससे तो कोई हमारी बात बन नहीं रही, तो फिर वो एक और उन्होंने ऑफर पेश की। उन्होंने कहा देखिए आप एक साल तक हमारे बुतों को पूजें, एक साल हम आपके खुदा की अकेले की इबादत करेंगे, बुत नहीं पूजेंगे। तो यानी एक कॉम्प्रोमाइज कर लें आप हमारे साथ और कई मिडिल वे ढूंढ लेते हैं, क्या जरूरत है इस तरह लड़ाई झगड़ों के साथ रहने की, कोई दरमियान में आके मिल लेते हैं ना। वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लचक दिखाएं तो वो भी लचक दिखाएं। तो ये शैतान के टैक्टिक्स होते हैं, इसी के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरत लेकर नाजिल हो गए कि कुरैश को सुना दें आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो क्या फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, अल्लाह के दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। ये नहीं है कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा उनका भी मान लेते हैं। कई लोग इस्लाम को इस कदर अपोलोजेटिक वे में पेश करते हैं लोगों के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने, कि जैसे वो बड़े यानी अब उनको समझ नहीं आ रही, वो खुद इस चीज़ के ऊपर अफसरदा है कि हाय लौंडियों का क्यों जिक्र आ गया, और ये चार शादियों का क्यों हो गया, और रजम की सज़ा क्यों है, और हाथ काटने की सज़ा, ये तो हमें बड़ी शर्म आती है, हम कैसे उनके सामने पेश करें। आपको अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह का दीन है और पूरा दीन जो है इसमें हिकमत है, तो इसमें से कुछ चेंज नहीं हुआ हुआ, क्यों हम अपोलोजेटिक हों। वो फिर कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, हाँ जो आप कर रहे हैं वो ठीक ही है, इतना सा तो ये ठीक है, ये तो मैं बात आपकी मानती हूँ। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पूरा पूरा दीन में दाखिल होना होगा, और ये शैतान की चालों में से है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको खुतुआत ही शैतान कहा है कि वो कभी ये नहीं आपको पहले से कहेगा कि इस्लाम को पूरे को छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा अपने रास्ते पर लेकर, स्टेप बाय स्टेप, खुतुआत शैतान वाला तभी खुतुआत शैतान, इसीलिए उसके स्टेप्स के मत फॉलो करो। जैसे आपने किसी टैंकी को खाली करना है तो एक तो ये आप टैंकी को तोड़ दें, लेकिन तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको, अगर आप उसका नल खोल दें और बस थोड़ा सा खोले, आहिस्ता आहिस्ता पानी टपकता रहेगा और टैंकी एक दिन खाली हो जाएगी। शैतान को कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से अपना काम कर रहा है, वो नलका खोल देता है, थोड़ा थोड़ा करके बंदा दीन से दूर होता जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको दूर ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते वहां ले जाता है कि जहां पर दीन का सफाया हो चुका होता है और बंदे को पता ही नहीं होता। तो ये शैतान इन तरीकों से काम करता है, वो ऐसे नहीं है कि वो पहले दिन ही आकर आपको कहेगा कुफर कर लो, नहीं, वो कुफर की तरफ ले जाने के लिए पहले कॉम्प्रोमाइजेस कराता है, छोटे छोटे काम कराता है, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या हर्ज है, देखो ये तो फलां भी कर रहा है, देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, हिजाब से क्या फर्क पड़ता है, दिल का हिजाब होना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से क्या होता है वो तो नॉर्मली चीजें हैं, डेट पे जाने से क्या हो जाता है ये तो आजकल सभी कर रहे हैं। लड़की अगर डांस कर लेंगी इस शादी के ऊपर तो क्या फर्क पड़ता है, खुशी ना मनाना कोई बुरा तो नहीं है, फहाशी के सीन टीवी पे चल रहे हैं तो क्या हो गया, आजकल तो सारों के सामने ये होते हैं, इतने भी रिजिड होने की जरूरत क्या है। तो शैतान ना टैंकी से जरा जरा पानी निकलवाता है,
हत्ता के सफाया हो जाता है। होमोसेक्सुअलिटी क्या है? ये तो नॉर्मल बात है, बेचारों का क्या कसूर है? यानी हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज। तो इस चीज से बच के रहना चाहिए कि ये खुतुवाते शैतान है, और शैतान थोड़ा थोड़ा करके ही लेता है, दीन का सफाया कराता है। तो देखते हैं सूरत को, इस सूरत बड़ी अहम सूरत जो हमने पढ़नी भी होती है। कुल कह दीजिए ए नबी, यानी पहले सूरत कौसर थी, अल्लाह ताला ने अपने नबी का दिफा फरमाया, अपने नबी की शान में खुद अल्लाह ताला ने काफरों को रद्द किया, और अब फरमाया आप उठे जब अल्लाह ताला के बारे में लोग बातें ऐसी करें, कुफर करें, तो आप कहें या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। आप देखें, याद करें इस कुराने करीम का जब आगाज हुआ था, तो पहला या अय्युहा किसके लिए था? अन्नास के लिए, लोगों के लिए, सूरह बकरा में। और उसमें लोगों को कहा गया था कि आप अल्लाह की इबादत करो। अब कुरान करीम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, वो लोग जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करने वाले वो काफिर हैं, अब उनको खिताब किया गया है, ए काफिरो। अल्लदीना कफरूनी कहा गया, अल कैफिरून इसम है, यानी वो जो काफिर, फेल जो होता है ना, वो उसमें टेम्प्रेरी का माना होता है। और जब काफिर कह दिया गया, वो जो मुस्तकबिल में भी काफिर है, आज भी काफिर है, न, न, जब नाउन लाया जाता है। ला आबुदू, मैं नहीं इबादत करता, मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो। वो इबादत किसकी करते थे? हुबल की, लात की, उज्जा की, बुतों की। मैं उनकी इबादत नहीं करता, यानी आपने सुबह भी उठ के डिक्लेयर करना, रात को सोने से पहले भी आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, चाहे वो कोई किसी की भी हो। तो उस वक्त मुशरिकीन इनकी करते थे, आज जो भी काफिर जिनकी भी इबादत करते हैं, मैं उनकी इबादत नहीं करता। देखिए ना, आप एक समझ लें, जिसको कहते हैं ना, एक रिवाइवल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं उस चीज को ना, अपने आप के सामने रख लें, मैंने नहीं करनी, नहीं करता, नहीं करूंगा, मुजारे है ना, ला आबुदू, नहीं मैं करता और नहीं मैं करूंगा, मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो। आ देखें, अब मैंने जैसे आपको कहा कि वो लोग तो अल्लाह ताला की भी इबादत करते थे, लेकिन जब वो साथ शिर्क करते हैं, तो ये नहीं कहा गया कि तुम अल्लाह की इबादत तो करते हो, साथ तुम शरीक भी ठहराते हो। नहीं, तुम सिरे से अल्लाह की इबादत करते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम नहीं इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत, मैं किसकी इबादत करूँ? मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तुम नहीं उसकी इबादत करते। लेकिन वो कहते थे कि हम अल्लाह की इबादत करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इबादत शुमार ही नहीं किया, वो इबादत है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, उसको इबादत कहा ही नहीं जा सकता। तो चाहे कोई कहता भी रहे, एक ऊपर वाले को तो हम भी मानते हैं, लेकिन जब तुमने शिर्क कर लिया ना, तो अल्लाह की इबादत है ही नहीं वो, चाहे तुम कितना भी कहते रहो। वो तो अल्लाह का नाम भी लेते थे, अल्लाह सुबहाना तआला का वो डिनाई नहीं करते थे। अब का तो जो मुशरिक है, उसने अल्लाह का नाम भी लेना बंद कर दिया, वो तो अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन वो साथ चूके शिर्क करते थे, इसलिए ला अंतुम वला अंतुम, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, तुम नहीं उसकी इबादत करने वाले। तो शिर्क, जैसे आपको मैंने शिर्क खफी का बताया था, चाहे शिर्क अकबर हो, चाहे शिर्क असगर हो, मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाता है वो। यानी अगर कोई कहे 99% मैं तौहीद पे हूं, सिर्फ 1% शिर्क करता हूं, सिर्फ 1%, तो ये शिर्क जो 1% है ना, ये मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाएगा, उस 99 को भी जीरो कर देगा। वाला अना आबिदुम मा आबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत, जिसकी तुमने इबादत की। तो पहले भी ये आया, अब फिर आया, तो मैंने पहले भी कभी तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं की और ना ही करूंगा। इसमें तकरार यानी क्यों आई है? बस तो वो कहते हैं कि तकरार एम्फोसिस के लिए सिर्फ आई है। और कई दफा कुरान करीम में ऐसा होता है, आप जैसे कि कई आयतें आप सूरह कमर में देखते हैं, आयतें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इस तरह से कुरान में होता है। दूसरा एक वजह यह है कि ये जो पहले आया ना, ला आबुदू माता आबुदू, ये हाल है, ये इस वक्त मैं नहीं करता, और ये जो इस वक्त आ रहा है आयत नंबर 4 में, तो ये फ्यूचर के लिए, मैं इबादत करूंगा भी नहीं। वाला अना आबिदुम, आबिद, अब आप देखें आबिद वैसे ही जैसे काफिर है, यानी नाउन है, नाउन में कंसिस्टेंसी होती है, यानी नाउन फेल से फर्क होता है, यानी नाउन में आगे तक भी मैं कभी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। और इसकी एक वजह ये भी बयान करते हो लमा कि पहले जो था वो एक्शन था, और दूसरा जो ये अब आया तो तरीके की भी मैं इबादत नहीं करूंगी, जिस तरीके से तुम इबादत करते हो उस तरह से मैं नहीं करूंगा। तो काफरों के तरीके को भी नहीं अपनाना चाहिए इबादत के लिए, के जैसे उनके तरीके इतने फैसिनेट करने लगे कि हम भी वैसे ही तरीके बना लें, वो क्रिसमस ट्री खड़े करते हैं तो हम भी ईद पे एक ट्री खड़ा करके बैठ जाए, या वो इस तरह से जाके सज्दे करते हैं तस्वीरों के आगे, बुतों के आगे, तो हम भी एक अस्तग़फ़िरुल्लाह तस्वीर के आगे सज्दे शुरू कर दें। ये नहीं, हम उनके तरीकों के मुताबिक नहीं कर सकते। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया था, चार काफिर थे वो जिन्होंने ये बातें शुरू की थी और जिन्होंने आके बात की थी, वो कभी भी ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला को पता था, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इबादत करने वाले हो ही नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आप ये कह दें कि तुम नहीं इबादत करने, यानी कभी भी नहीं करोगे तुम। और इबादत में पांच चीजें आ जाती हैं, मोहब्बत भी इबादत का एक जुज्व है, कॉम्पोनेंट है, इताअत भी इबादत का एक कॉम्पोनेंट, यानी इबादत में ये सारी चीजें शामिल हैं, तवक्कुल भी इबादत का एक जुज है। तवक्कुल करना, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना, ये इबादत का ही एक जुज है। इसी तरह इखलास, ये भी इबादत का एक जुज है कि खालिसतन सिंसेरिटी के साथ हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। अगर नमाज है तो अल्लाह के लिए, अगर कुर्बानी है तो अल्लाह के लिए, दुआएं तो अल्लाह से, ठीक है। तो और इताअत को तो हम समझते ही नहीं, जो पहले दूसरी चीज मैंने बताई है, इताअत को तो हम समझते ही नहीं कि इबादत का जुज है। इबादत अल्लाह की हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई इताअत का ना हम ये इरादा रखते हैं, ना हमें इस चीज का शऊर है कि इबादत का हिस्सा है। आप इबादत कर ही नहीं रहे अगर आप उस रब की इताअत नहीं करते, और अगर आप उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो फिर भी आप इबादत नहीं कर रहे। अगर आप उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही औरों के ऊपर है, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको जानते ही नहीं, उसको समझा ही नहीं कि वो है कौन। तो इबादत किसकी कर रहे हैं फिर? भरोसा तो उस पर होना चाहिए। फिर इखलास, सिंसेरिटी, ये नहीं कि किसी और के लिए और काम करते रहें, उनको दिखाने के लिए, या उनकी वाहवा के लिए, या उनकी नजरों में जज जाने के लिए, या उनसे कुछ फवायद हासिल करने के लिए आप ये काम नेकी के जो हैं, दीन के जो हैं, या कोई अवार्ड लेने के लिए, या कोई सर्टिफिकेट अपने नाम करने के लिए, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो इखलास तो रहा ही नहीं। अल्लाह हु अकबर। तो और एक और चीज़ के गुलामी करना, उसकी गुलामी करना, ये भी इबादत है। ये यानी गुलामी जो होती है वो 24 आवर 7 डेज अ वीक, यानी हर वक्त की होती है। वो ये नहीं होती कि इस वक्त करूँगी, इस वक्त नहीं करूँगी, ये करूँगी और ये नहीं करूँगी, ये कंडीशनल नहीं होती। अल्लाह की इबादत कंडीशनल नहीं होगी, और अल्लाह की इबादत में ये नहीं होगा इस टाइम से इस टाइम तक मैं इबादत करूंगी, जवानी में नहीं करूंगी, बुढ़ापे में करूंगी, उस वक्त नहीं करूंगी तो इस वक्त करूंगी।
बाहर जाऊंगी तो तब नहीं, अल्लाह ताला की बंदी मैं घर के अंदर हो जाऊंगी, मस्जिद में हो जाऊंगी, रमजान में हो जाऊंगी, बाकी टाइम मेरा अपना अपने मुताबिक चलेगा। तो ये सब इबादत के अंदर आते हैं। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। लकुम पहले आया तो इसमें हसर आ गया कि तुम्हारे लिए ये तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा ही दीन है। जैसे इया का नाबुदु ऐसे है ना, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। तो उसने हसर कर लिया, एक्सक्लूसिव हो गया सोली। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, यानी अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम इससे बरी हैं। जो तुम्हारा दीन है वो तुम्हारे लिए ही होगा, हाँ तुम्हें ही, जिसको हम कहते हैं ना तुम्हें ही मुबारक हो, ये हमें तो इसमें से नहीं कुछ चाहिए, हमारे लिए हमारा दीन काफी है। तो अब यहाँ पे दावत खत्म हो गई कि अब हमने हुज्जत तमाम कर दी कि अब हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते इस दीन के मामले में। देखते हैं इसकी तिलावत, सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
एक बात और यहाँ पे दीन का लफ्ज़ समझ लीजिए कि दीन वे ऑफ लाइफ को भी कहते हैं, दीन जजा व सज़ा को भी कहते हैं, जैसे मालिक यौमिद्दीन, हिसाब के दिन, जजा व सज़ा का दिन। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जजा व सज़ा है, हिसाब है हमारे लिए हमारा है, और वे ऑफ लाइफ तुम्हारे लिए तुम्हारा है और हमारे लिए हमारा है। क्या वाकई हमारा वे ऑफ लाइफ और उनके वे ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क है, या फिर सेम ही है और हर चीज़ हम उन्हीं की कॉपी करना चाहते हैं? तो फिर तो ना हुआ लकुम दीनुकुम वलिया दीन, फिर तो ये कि हमारा और तुम्हारा दीन तो एक ही है। जब वे ऑफ लाइफ एक है तो दीन एक ही हुआ ना, और इसमें कानून भी आ गया। दीन कानून को भी कहते हैं, शरीयत को भी कहते हैं। अगर वही लॉज उनके फॉलो करने हैं तो फिर तुम्हारा क्या, तुम अपनी शरीयत छोड़ के उनकी शरीयत को फॉलो करना शुरू कर दो, उनके कानून को ज्यादा ऊपर रख लो। शरीयत तो टूट रही है लेकिन उनका कानून ना टूटे, हम तो वो ही मानेंगे इसलिए कि हमें अब उसमें फायदा नजर आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लकुम दीनुकुम, उनका दीन जो है ना वो उनके लिए ही है, तुम्हारे ही, तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारे ही लिए है, हम नहीं इसको फॉलो कर रहे, हमारा अपना दीन है। और ये वो सूरत है सूरतुल काफिरून, जो कि आप देख लें कि सूरह जिन एक कुल से शुरू हुई थी और ये सूरत कुल से शुरू हुई, और उसके बाद तीन सूरतें अब कुरान में कुल से शुरू होंगी। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप ये कह दो और अपनी बरात का इजहार कर दो, और वाकई फिर इसमें बरात है। अगर आप रात को सोने वक्त भी और सुबह को उठ के भी इस सबक को दोहरा लें कि नहीं है, मैं नहीं उनके तरीकों के ऊपर मैं नहीं चल सकती, मैं क्यों उनको फॉलो करूं, मैं उनके ना इबादत के तरीके, ना वे ऑफ लाइफ, ना किसी और तरह से मैं एग्री नहीं करती उनकी इबादत के तरीकों से। ठीक है, उनके साथ आप बिजनेस में एग्री कर रहे हैं, आप दुनियावी कामों में एग्री कर रहे हैं, ये नहीं जरूरी कि आप हर चीज़ में उनके साथ एक तलवार लेके खड़े हो जाएं, मगर इबादत हमारी ये एक चीज़ नहीं हो सकती, इसके ऊपर हम एग्री नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना सारे ही अच्छे हैं, बस आप किसी को ना कहें कि वो गलत है उनका तरीका, सारों कह दें कि सारे ही ठीक है। नहीं, ये सूरत यही तो बताती है, नहीं है, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यही तो पैगाम है ना, फ्यूचर में करूंगा ना आज करता हूं। और हम क्या कह रहे हैं, सारों के तरीके ठीक हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए, ऐसी बातें कहने से भी। और मैंने जो नवाक़े से इस्लाम बताए थे उनमें से फिर एक ये भी चीज़ है कि फिर दूसरों को समझना ही नहीं कि ये काफिर हैं, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, हम सारे ही ठीक हैं। हक और बातिल एक नहीं हो सकते, रोशनी और अंधेरा ये नहीं आप कह सकते दोनों दोनों ही रोशनी है और दोनों ही हक है, एक तो जरूर बातिल होगा, वो अपोजिट है इससे।